दिन भर बुधवार 11 नवंबर, मैं हूं निखिल रंजन। बीजेपी में मोदी शाह के बचाव में आए नितिन गडकरी, बयानबाजों पर कार्रवाई की भी बात कही।
अध्यक्ष जी से मैंने भी अनुरोध किया है कि इसके बाद पार्टी में बयान देते समय अगर कोई गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो उनके बारे में भी पार्टी को कठोर भूमिका अदा करनी होगी।
उल्फा के नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश ने किया भारत के हवाले। पंजाब में सरबत खालसा के बाद कई सिख नेता गिरफ्तार। प्रधानमंत्री चले ब्रिटेन की यात्रा पर, लेकिन क्या भारत ब्रिटेन के संबंधों में लौट पाएगी ऐतिहासिक गर्मजोशी?
मोदी बहुत बहुत देशों विजिट किया था इंग्लैंड आने के पहले, इसलिए इसका एक शायद सबूत था कि मोदी ने रुचि नहीं है इस रिलेशनशिप में।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बिहार में मिली हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का बचाव किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि पार्टी के उन नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने बिहार में हार के बाद गैर जिम्मेदार बयान दिए हैं। अफ्रीकी प्रवासियों को यूरोप जाने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका के नेता माल्टा द्वीप में इकट्ठा हो रहे हैं। लोगों को अफ्रीका में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.80 अरब यूरो का ट्रस्ट फंड स्थापित किया जा रहा है। दूसरी ओर स्लोवेनिया में प्रवासियों को उत्तर की ओर जाने से रोकने के लिए क्रोएशिया की सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। यूरोप जाने की कोशिशों में कई और प्रवासियों की मौत हुई है। ग्रीस के लेस्बोस और तुर्की के बीच डूबी एक लकड़ी की नाव में सवार 14 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। 27 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। क्रोएशिया के आंतरिक मामलों के मंत्री रेंको ओस्तोजिक का कहना है कि बाड़ लगाना पैसे की बर्बादी है। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बाढ़ नहीं है जो प्रवासियों को रास्ता पाने से रोक सके, लेकिन अगर उनकी यात्रा व्यवस्थित हो तो ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि यह पैसे की गैर जरूरी बर्बादी है और ज्यादा महत्वपूर्ण होता यदि इससे प्रवासियों के लिए स्वागत केंद्र बनाए जाते। ये थे क्रोएशिया के आंतरिक मंत्री रेंको ओस्ताजिक के शब्द। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि साल अब तक 5 लाख से अधिक लोग यूरोप पहुंच चुके हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सीन ने विपक्षी पार्टी की नेता आंग सान सूची को रविवार को हुए आम चुनावों में जीत के लिए बधाई दी है। बीबीसी से बात करते हुए राष्ट्रपति के प्रवक्ता यूतूत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। अपनी फेसबुक पन्ने पर राष्ट्रपति ने कहा है कि उनकी सरकार जनता के फैसले को स्वीकार करेगी और सत्ता सौंप देगी। अभी तक जारी नतीजों में एनएलडी ने 90% सीटों पर जीत हासिल की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के नजदीक प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए चेतावनी फायरिंग की है। ये लोग तालिबान के हाथों हजारा शिया समुदाय के 7 लोगों की हत्या का विरोध कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के शीर्ष खेल अधिकारियों के साथ बैठक रद्द कर दी है। इस बैठक में रूसी एथलीटों पर लगे डोपिंग के आरोपों पर चर्चा की जानी थी। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का कहना है कि भारी बारिश के कारण सोची जाने वाली फ्लाइटें बाधित हुई हैं। ये बैठक सोची में ही होनी थी। सोमवार को विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक 300 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी जिसमें रूस पर एथलीटों की डोपिंग में मदद करने के आरोप लगाए गए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। बिहार के चुनावी हार के साथ शुरू हुई बीजेपी में उथल पुथल एक दिन पहले आए दिग्गज नेताओं के बयान से तेज हो गई है। आज नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया और ये भी कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अध्यक्ष जी से मैंने भी अनुरोध किया है कि इसके बाद पार्टी में बयान देते समय अगर कोई गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो उनके बारे में भी पार्टी को कठोर भूमिका अदा करनी होगी।
खबर यह भी आई थी कि 4 वरिष्ठ नेताओं ने जो बयान दिया था उसकी रूपरेखा पार्टी के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने तैयार की थी। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने गोविंदाचार्य से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसे साफ इनकार किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर किसी बात से नाखुश हैं तो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए।
जो वरिष्ठ नेताओं का साझा बयान आया है उसमें मुझे लग रहा है कि विश्वास और संवाद आपस में बढ़ाने की जरूरत है संगठन का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए।
क्या ये चार दरकिनार किए हुए नेताओं का फ्रस्ट्रेशन है या ये मामला कुछ आगे जाता हुआ नजर आता है?
इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। जो स्थितियां हैं उसमें मैं मानता हूं कि अपने वरिष्ठ लोग घर के बड़े हैं मान लो, तो उनके मन में अगर ऐसा भी विषय आया तो ये कोई अच्छी बात थोड़े है। जैसे परिवार में सब मिलजुल कर करते हैं, बड़ों का स्नेह छोटों को मिलता है, छोटों की ओर से आदर बड़ों को मिलता है, कहीं ना कहीं इस पारिवारिक भावना में कुछ कमी और ढिलाई है, इतना तो स्पष्ट है। इस प्रकार के बयान आने की स्थिति बन गई इसके कारण।
गोविंद जी, ये बयान आया इसके बाद तीन पूर्व अध्यक्षों का, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी और वेंकैया नायडू जी का बयान आया कि अटल आडवाणी जी के समय की ही परंपरा है जहां हार का एक सामूहिक पूरी पार्टी अपने ऊपर ब्लेम लेती है, इसे आप किस तरह से देख?
मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। एक तो ये सब बातें भावना की ज्यादा है, हर चीज की सफाई तो किसी भी तरह से दी जा सकती है, मगर स्पिरिट को समझने की जरूरत है। तो अधिक विश्वास बढ़े इतना तो आवश्यक है। कुछ भी कारण हुआ, पहले भी मानो ऐसा हुआ हो, आज अपने परिवार के बड़े लोग इस प्रकार का बयान देने को खुद को विवश पा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि भाई घर के अंदर सुलह सफाई होनी चाहिए, स्थितियों का पर चर्चा हो जानी चाहिए और बाहर न जाए बातें अनावश्यक, उसमें किसी का फायदा नहीं है, न पार्टी का न देश का।
ये किस तरह से ये भूमिका आ रही है कि आप मार्गदर्शक मंडल की?
नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली का दिन था तो स्वाभाविक है कि अपने परिवार के बड़े, हम तो मानते हैं कि भैया अपने यहाँ सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोगों में से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी है। विशेष तौर पर त्योहार के दिन प्रणाम करने गया था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कोई बयान आने वाला है 8:30 बजे, वो तो वहाँ गए। हमने दीपावली की शुभकामना दी, आशीर्वाद मांगा, इतना करते करते तब मालूम पड़ा अगर कोई सया बयान भी जाने वाला है तो मैं वहां से निकल गया। तब लोगों को लगा होगा कि गोविंद जी भी यहाँ आए हैं, आए होंगे तो अब ये सहज ही मानना तो कठिन रहता है ना लोगों को। इसलिए मीडिया के भी कुछ लोगों को अगर ये लगा होगा कि हम कोई ड्राफ्टिंग में रहे, तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलत फहमी है।
जीत की बात आती है तो सहरा दो लोगों को खासतौर पर मोदी जी और अमित शाह जी के सर पर रहता है, लेकिन जब हार की बात होती है तो सामूहिक नेतृत्व पर मामला चला जाता है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?
मैंने पर्टिकुलरली क्या है कि इन बातों में मैंने नहीं पढ़ने का निश्चय किया है। मैंने इतना ही कहा है कि पार्टी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि ट्रस्ट डेफिसिट और डायलॉग डेफिसिट में कमी है तो उसको ठीक किया जाए। ठीक किया करे तो कर ले, और नहीं करना चाहते अलग ढंग से व्यू करते हैं तो वे आजाद हैं, कुछ भी सोचें।
बीजेपी के पूर्व के विचारक केन गोविंदाचार्य से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। पूर्वोत्तर भारत के चरमपंथी संगठन उल्फा के महासचिव रहे अनूप चेतिया को बांग्लादेश की सरकार ने भारत को सौंप दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा,
অনুপ চেটিয়া একজন ভারতীয় নাগরিক, আমাদের আইনের মাধ্যমে যিনি কারাগারে আটক ছিলেন তার আটকাদেশ সম্পন্ন হয়েছিল এবং যেহেতু সে বিদেশি সেহেতু সে
অনুপ চেতিয়া এক ভারতীয় নাগরিক হ্যায় হমারে কানুন কে অন্তর্গত উসে জেল মে রাখা গিয়া থা লেকিন জেল মে রাখনে কি অবধি পুরি হো গই থি অর চুকি ও বিদেশি হ্যায় অর ইয়াহা সে জানা চাহতা থা ইসলিয়ে হমনে উসে ভারত কো সঁপ দিয়া। বাংলাদেশ কে গৃহমন্ত্রী কে শব্দ। ইস বারে মে অর জানকারি কে লিয়ে কলকাতা সে হমারে সহযোগী অমিতাভ ভটসালী হমারে সাথ হ্যায়। अमिताभ भटसाली, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बताइए, और ये बताइए कि ये भारत आने के क्या बारे में क्या जानकारी है आपके पास, क्या वो आ चुका है, वो आने वाले हैं?
देखिए, 1997 में बांग्लादेश में अनूप चेतिया को पकड़ा गया था, उनको फर्जी पासपोर्ट से इलीगली बांग्लादेश में रहने का आरोप था उनके ऊपर और 7 साल का साजा उनका हुआ था। और उसके बाद से वो तीन बार बांग्लादेश सरकार के पास अपील कर चुके थे कि उनको वहीं उसी देश में राजनीतिक आश्रय दिया जाए, पर तीनों बार इनका अपील जो है खारिज कर दिया गया। और आखिर में आज सुबह करीब भारतीय समय रात 2:30 बजे के करीब ढाका के नजदीक कासिमपुर जेल से अनूप चेतिया और उनके दो साथियों को रिहा कर दिया गया। औपचारिक तौर पर इतना ही बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, पर इसके बाद कहां से उनको सीमा पार करवाया गया, अभी वो कहां है, इन सब खबरों का औपचारिक पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। पर भारत के दो खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बीबीसी को कंफर्म किया है कि सुबह 9:45 बजे अनूप चेतिया को पश्चिम बंगाल के भारत बांग्लादेश सीमा पर लैंड पोर्ट जो है पेट्रा पोल, उस इलाके से भारत में लाया गया। पर अभी वो कहां है ये इसका पुष्टि कहीं से अभी नहीं चल रहा है, पर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अनूप चेतिया को लेकर के ये लुका छुपी क्यों हो रहा है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी बता दें कि नरेंद्र मोदी ने आज जब दिन में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को फोन किया और राजनाथ सिंह ने राजनाथ सिंह ने जब ट्वीट किया तभी इसकी औपचारिक पुष्टि हुई है।
अमिताभ ये बताइए कि क्या भारत सरकार ने उसके अनूप चेतिया के प्रत्यर्पण के लिए कोई मांग की थी बांग्लादेश सरकार से?
ये दोनों के बीच नेगोशिएशन काफी सालों से चल रहा है, अनूप चेतिया खुद भी आना चाह रहे थे और भले ही अल्फा के कामकाज से अनूप चेतिया 1997 से बाहर है बांग्लादेश में जब उनका गिरफ्तारी हुआ था, पर ये भी सही है कि उनके जैसे पॉलिटिकल एक्यूमन यानी राजनीतिक सूझबूझ अल्फा के बहुत कम लीडरों में है और इसीलिए शांति वार्ता जब शुरू हुआ भारत सरकार और अल्फा के बीच तभी से अल्फा के लीडरों का दावा था कि अनूप चेतिया को वापस लाया जाए और उनको वार्तालाप में शामिल किया जाए। अनूप खुद भी भारत वापस आना चाह रहा था और अब जब अल्फा के साथ भारत सरकार की शांति वार्ता एक महत्वपूर्ण स्तर पर है, 24 नवंबर को शायद शांति वार्ता का आखिरी चरण शुरू होने जा रहा है जहां पीस ट्रीटी लिखने का काम शुरू होगा, तभी अनूप चेतिया जैसे विदग्ध राजनीतिक को वापस लाना अपने आप एक महत्वपूर्ण घटना है। निखिल
बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए। कोलकाता से अमिताभ भट्टशाली बता रहे थे अनूप चेतिया की गिरफ्तारी के बारे में। उल्फा में हुई टूट से पहले अनूप चेतिया उसकी केंद्रीय समिति के सदस्य थे। चेतिया के प्रत्यर्पण को भारत और अलगाववादी संगठनों के बीच हो रहे शांति प्रयासों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
बांग्लादेश की जेल में करीब 18 साल रहे अलगाववादी उल्फा नेता अनूप चेतिया को बुधवार तड़के भारत के हवाले करने की खबर के बाद केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल उल्फा का अरविंद राजखुआ गुट इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा है। राजनीतिक मायनों में भी उल्फा नेता के भारत प्रत्यर्पण को अहम माना जा रहा है। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं कि अगर चेतिया भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में अरविंद राजखुआ गुट के साथ शामिल होते हैं तो इससे वार्ता विरोधी अलगाववादी नेता परेश बरुआ को बड़ा झटका लगेगा। उल्फा में उप मुख्य सेना अध्यक्ष रहे और अब शांति वार्ता गुट के नेता राजू बरुआ ने कहा,
चेतिया उल्फा की केंद्रीय समिति के सदस्य रहे हैं, वे संगठन में साधारण संपादक भी रहे, इसलिए वार्ता में उनकी भूमिका काफी अहम होगी। असम के लोग भी उनकी मौजूदगी चाहते हैं। उन्होंने संगठन को जिस तरह चलाया था उसके आधार पर वार्ता को सफल बनाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें बल मिलेगा। भले ही वो जेल में रहे हों लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हमारा संपर्क बना रहा और उसी आधार पर शांति वार्ता की प्रक्रियाओं को हमने आगे बढ़ाया।
असम में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले चेतिया का भारत प्रत्यर्पण और उल्फा के साथ शांति वार्ता समझौता खासकर भाजपा के लिए भी काफी अहम बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा था कि उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कहा कि असम की 6 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की उल्फा की मांग लगभग स्वीकार कर ली गई है और फाइल कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री के पास है। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक का कहना है,
देखिए ये सब निर्भर करता है कि अनूप चेतिया किस तरफ जाएंगे, यानी कि जब अनूप चेतिया जेल गए थे बांग्लादेश में आज से 18 साल पहले तो उस वक्त अल्फा के सब लोग एक साथ थे, अल्फा में कोई फूट नहीं था। अब अल्फा जो है दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक हिस्सा जो है वो चेयरमैन अरविंद राजखुआ के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा जो है उनके सेना प्रमुख परेश बरुआ के नेतृत्व में जो है वो जंग में डटे हुए हैं, अभी भी बर्मा के जंगलों में बैठकर वो अपनी अलगाववादी जो कार्य है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब अनूप चेतिया किस तरफ जाएंगे उस पर निर्भर करेगा, अनूप चेतिया किस तरफ जाएंगे इस विषय में कोई भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।
ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि सांगठनिक रूप से परेश बरुआ कमजोर पड़ चुके हैं और इसलिए नगा अलगाववादी संगठन NSEN खापलांग के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ चरमपंथी संगठनों को लेकर उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है जिसका मकसद खासकर सुरक्षा बलों पर हमले करने का है। लेकिन भारत सरकार ने अब ऐसे अलगाववादी संगठनों से निपटने के लिए पूरी तरह ठान ली है। सरकार के सुरक्षा रणनीतिकार जिस तरीके से इन अलगाववादियों पर दबाव बना रहे हैं इससे असम में आने वाले दिनों में स्थायी शांति की उम्मीद की जा सकती है। मैं दिलीप कुमार शर्मा BBC हिंदी के लिए गुवाहाटी से।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
बीबीसी रेडियो पर सुन रहे हैं आप दिन भर निखिल रंजन के साथ, और अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में सरबत खालसा के एक दिन बाद सिमरनजीत सिंह मान और भाई मोहकाम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई और प्रमुख सिख नेताओं की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने छापे मारे हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए रविंदर सिंह रॉबिन से।
कुछ गर्म ख्याली सिख नेताओं द्वारा कल किए गए एक बड़े धार्मिक सम्मेलन के बाद, जिसे सरबत खालसा का नाम भी दिया गया, पंजाब पुलिस ने आज सरबत खालसा बुलाने वाले मुख्य नेताओं सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। शिरोमणि अकाली दल मान के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान व भाई मोहकम सिंह को तो सुबह 3 बजे ही गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था, और अन्य नेताओं को पकड़ने के लिए आज पंजाब भर में छापा मारकर कई नेताओं को डिटेन कर लिया है। पंजाब पुलिस के कमिश्नर जितेंद्र सिंह औलख ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां एहतियातन की गई हैं। औलख का कहना था, जबकि गरम ख्याली सिख नेताओं का कहना है कि सरकार सरबत खालसा द्वारा बुलाए गए एक भारी इकट्ठ से घबरा गई है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मोहकम सिंह के बेटे सुखदीप सिंह ने बीबीसी को बात करते बताया,
देखो जी ये गल जरूर हैगी है कि भाई जदों कौम ने सारी ने मान लिया है कि भाई साडे जथेदार ये है, लखां लोकां दे इकट्ठ ने मान लिया, पर सरकार जिहड़ी है वो अपनी बद नीति ते आई हुई है ते वो नहीं चाहुंदी भी कि भाई जिहड़े कौम दे जथेदार जिहड़े नवे लगे है
सरबत खालसा की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नए चुने गए कार्यवाहिक जत्थेदार ध्यान सिंह मंड सहित अन्य नेता आज अकाल तख्त साहब की तरफ जाएंगे और ध्यान सिंह मंड है वो कौम के नाम पर संदेश देंगे। दूसरी तरफ आज अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अकाल तख्त से दिवाली के मौके पर सिख कौम के नाम पर अपना संदेश दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ एक लोगों ने जत्थेदार को उससे पहले काले झंडे भी दिखाए और अपना विरोध प्रकट किया। जानकार कहते हैं कि सिख नेताओं की गिरफ्तारियों के बाद चाहे आज का प्रोटेस्ट रोकने में पुलिस कामयाब रही, लेकिन पंजाब में शांति बहाली के लिए कई और कदम उठाने की जरूरत है। अमृतसर से बीबीसी न्यूज के लिए रविंदर सिंह रॉबिन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद भी इस वक्त लंदन में हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के साथ ही लोगों की उत्सुकता पर भी उनकी नजर है। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे इस बारे में जानकारी मांगी।
देखिए सबसे बड़ा कार्यक्रम तो 13 तारीख को है वेम्बली स्टेडियम में, जब प्रवासी भारतीय कम से कम 60,000 कहा जा रहा है कि लोग वहां पे उनका स्वागत करेंगे। वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा और सब लोग यहाँ जितने लोगों से मैंने बात की, भारत के जो रहने वाले यहाँ पर आबाद हैं वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा भारत के जो यहाँ पे प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे भी वो डिनर पे मुलाकात करेंगे 13 तारीख को। फिर वो डाउनिंग स्ट्रीट में जाएंगे, डेविड कैमरन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे और लंच है उनका क्वीन के साथ, और वो फिर वो बर्मिंघम जाएंगे एक फैक्ट्री में, टाटा की जो फैक्ट्री है वहाँ पर। तो मुख्य रूप से यही सब उनके कार्यक्रम है और उसके बाद इंडियन लीडर्स जो यहाँ पर है उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं।
जुबैर साहब, वहाँ किस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों में प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के करीब 1.5 साल के बाद वो जा रहे हैं, इतनी देर से क्यों जा रहे हैं, क्या इस तरह की कोई शिकायत भी है लोगों को?
नहीं, लोगों ने यहाँ पर ये उम्मीद थी लोगों को कि जब अमेरिका गए थे पहली बार, वहाँ 2 बार जा चुके हैं, जब पहली बार गए थे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, और हमें भी पता है कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम था लेकिन किसी तरह से वो टलता गया। तो लोगों में नाराजगी तो नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं और बड़ी तैयारियां चल रही हैं। वेम्बली स्टेडियम में भी धूमधाम से तैयारी चल रही है, लेकिन ये बात है कि बिहार के चुनाव के नतीजों के बाद जब मैं बर्मिंघम में 2 दिन पहले गया तो वहां पर भारत के जो निवासी है, भारत मूल के जो लोग हैं वो ये अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो जिस तरह की घटनाएं भारत में घट रही हैं वो उससे भारत की छवि पर असर होता है और प्रधानमंत्री को उन पे अंकुश लगाना चाहिए। और कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि अगर वो मिलेंगे प्रधानमंत्री से डिनर पे तो वो उनको ये बातें कहेंगे।
ये जो कारोबार की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां कारोबारियों से खास मुलाकात करते हैं, तो क्या इस तरह की कोई मुलाकात वहां भी रखी गई है? भारत और ब्रिटेन के बीच में जो आपसी कारोबार है वो चीन और दूसरे जो प्रमुख देश हैं उनकी तुलना में काफी अब कम हो गया है।
देखिए, अभी भी जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, आपसी व्यापार, वो 12-13 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कम नहीं है लेकिन इससे बहुत बेहतर हो सकता है। डेविड कैमरन प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के, उन्होंने खुद ही कहा था 2013 में कि 2015 तक ये दुगना हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, वहीं का वहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों प्रधानमंत्री आपस में जो मिल रहे हैं, ये इस प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पर आना हो रहा है, वो ये सब वेम्बली का जो इवेंट वगैरह वो सब तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो बातचीत असल में होगी वो व्यापार को ही लेके होगी और निवेश का मुद्दा होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस में, रक्षा के क्षेत्र में निवेश के बहुत चांसेस हैं और प्रधानमंत्री को ये उम्मीद होगी कि ब्रिटेन वहाँ उसमें निवेश करे। और हमने ये सुना है कि कुछ डिफेंस के मामले में कुछ पैक्ट हो सकता है, कुछ अग्रीमेंट हो सकता है, उसका अनाउंसमेंट भी हो सकता है।
बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे के बारे में। भारत और ब्रिटेन का संबंध 265 सालों का है और आज़ादी मिलने के बाद भी इसकी परतों में इजाफा होता रहा है। बीते कुछ दशकों में इस रिश्ते के क्या दायरे रहे हैं और अब ये कहाँ है, आइए आज दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया जहान। लंदन के बिग बेन की ये आवाज हिंदुस्तान के कानों में किसी मंदिर के घंटियों की तरह ही गूंजती है। सदियों तक भारत के लिए विदेश का मतलब ब्रिटेन रहा है, वो देश जिसने 200 सालों तक उस पर शासन किया और जो विलायत कहे जाने के बाद भी हिंदुस्तानियों की रोजमर्रा से लेकर खास जरूरतों में चाही अनचाही दखल देता रहा है। ब्रिटिश राज से आजादी मिले 65 साल बीत चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तानी दिलों पर इंग्लैंड का असर अब भी कायम है। हाँ, बीते सालों में फर्क ये आया है कि अब यूनाइटेड किंगडम में भी हिंदुस्तान बसने लगा है। 50 साल से लंदन में रह रहे लॉर्ड मेघनाथ देसाई।
भारत की जो आर्थिक व्यवस्था सुधर गई है, इससे लोग बहुत खुश है। और हमारे वहाँ बहुत सारे NRI है और PIO है, वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ काम करते हैं, यहाँ पार्लियामेंट में है, इंडस्ट्रीज में है। इस तरह से लोगों को बहुत फेमिलियरिटी हो गई है भारतीय लोगों से, भारतीय क्विजीन से, भारत के सब डिशेज यहाँ मिलती हैं, लोग खाते हैं, अब बहुत ही फेमिलियरिटी हो गई है।
दिल्ली से हर हफ्ते 80 से ज्यादा उड़ानों में सवार हजारों लोगों का लंदन आना जाना करीब करीब ऐसा ही है जैसे मुंबई या भारत का कोई और शहर। ब्रिटिश ब्रांड और यूनिवर्सिटियों के शौकीन भारत में भी बड़ी तादाद में हैं। उधर ब्रिटेन में भी बड़े कारोबारी से लेकर पेशेवरों, आम शहरियों और यहाँ तक कि संसद में भी भारतीय मूल के लोगों की बड़ी हिस्सेदारी है। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया की बेहतरीन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक इंग्लैंड की NHS भारतीय डॉक्टरों के दम पर चलती है।
हम अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज स्कूल्स के लिए जाते हैं, हमारे जो प्रोफेसर पंडित वगैरह हैं वो UK आना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का बहुत बड़ी रेपुटेशन है। तो अगर कोई भारतीय को चीन जाना हो पढ़ने के लिए या जर्मनी जाना हो तो एक नई भाषा सीखनी पड़ती है, मगर अंग्रेजी हम सबको आती है, तो अंग्रेजी भाषा के कारण जो संबंध बने हैं वो बहुत डीप, और उसको फ्रेंच, फ्रांस वाले या जर्मनी वाले उसको हटा नहीं सकेंगे।
इतना करीबी और ऐतिहासिक संबंध होने के बावजूद दोनों देशों का कारोबारी रिश्ता उस तरह परवान नहीं चढ़ सका है जितना कि भारत चीन या फिर भारत अमेरिका, और गुजरते वक्त के साथ वो बाकी देशों की तुलना में पिछड़ रहा है। 16वीं सदी की बात तो बहुत पहले पीछे छूट गई, लेकिन डेढ़ दशक पहले भी ब्रिटेन भारत के 5 बड़े व्यापारिक साझेदारों में था, जो अब 12वीं नंबर पर खिसक गया है। हालत यह है कि ब्रिटेन वासी जितना सामान भारत से एक महीने में खरीदते हैं उससे ज्यादा सामान चीन एक हफ्ते में खरीद लेता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और ब्रिटेन में उच्चायुक्त रहे सलमान हैदर।
पहले जब हम दुनिया की तरफ निगाह डालते थे तो सबसे पहले ब्रिटेन नजर आता था, हमारा कारोबार और कल्चरल लाइफ और एजुकेशन वगैरह में सबसे पहले लोग बर्तानिया का सोचते थे। अब हमारी निगाहें और दूर तक पहुंच चुकी हैं, बर्तानिया भी सिर्फ हमारी तरफ नहीं देखता है, उनके भी रिश्ते दुनिया भर में बहुत बढ़ गए हैं। तो इससे वो कॉन्सेंट्रेशन जो एक जमाने में था वो तो अब नहीं रह सकता है। जब आजादी हमने हासिल की थी तो उस वक्त रिश्ते ठीक नहीं थे, अब रफ्तार ठीक हो गए हैं और जैसे ही मौका होगा हम लोग उसी तरफ जगह डालेंगे और कोशिश हमारी रहेगी। इस वक्त शायद मुझे लगता है कि ब्रिटानिया ने यूरोप की तरफ कॉन्सेंट्रेशन अपना किया है, यूरोप का हिस्सा हो गए हैं जो वो एक जमाने में नहीं थे, तो इससे एक बैलेंस जो है ताल्लुकात में उस पर असर होता है। इसके बाद ये नहीं कि दोस्ताने ताल्लुकात कम हो गए हैं और हम जानबूझ के दूसरी तरफ हट गए हैं, लेकिन उनके भी जो ताल्लुकात अपने यूरोप में अपने इलाके में बढ़े हैं और दुनिया भर में, उसका भी असर होता है हम पर।
सिर्फ कारोबार ही नहीं, भारतीय सेना के रहन सहन और तौर तरीकों से लेकर अनुशासन तक में सबसे ज्यादा छाप ब्रिटेन की दिखती है, लेकिन दोनों देशों के रक्षा संबंध भी वैसे नहीं जिसकी मिसाल दी जा सके। रिवॉल्वर से लेकर लड़ाकू विमानों तक में भारत पर रूस, अमरीका, इसराइल और फ्रांस जैसे देशों का सिक्का जम चुका है और सरकारों के बदलने का भी इस पर कोई खास असर नहीं दिखता। लॉर्ड मेघनाथ देसाई:
इंडियन आर्मी ब्रिटिश ट्रेनिंग, ब्रिटिश डिसिप्लिन से पहले आ गया है, मगर डिफेंस के बारे में भी ऐसा है कि कभी कभी हम लोग फ्रांस जाते हैं, उनके एयरक्राफ्ट खरीदते हैं या रशिया या अमेरिका, वो भी ऐसे ही बात है कि अगर ब्रिटेन के पास चीज हो जो हमें जिसकी हमें जरूरत हो, इक्विपमेंट, तो हम लेंगे। मगर सैंडहर्स्ट और भारतीय सेना के बीच में बहुत सारे संबंध है, हमारे ऑफिसर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए भारत से ब्रिटेन तक और बहुत सालों से कोऑपरेशन है, मगर जब इक्विपमेंट की बात आती है तब भारत को तो यही सोचना चाहिए कि सबसे बढ़िया इक्विपमेंट कहाँ है, तब सेंटिमेंट नहीं चलेगा, तब एकदम हार्ड नोज बनना पड़ेगा कि भाई जहाँ से हमसे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, डिफेंस टेक्नोलॉजी मिले, वहाँ ही हम जाएंगे।
तो क्या ब्रिटेन से अब भारत का संबंध बस रिवायतों, तारीखों और सिर्फ उन चीजों के लिए है जो हमारे दिमाग से ज्यादा दिल के करीब हैं, जिन्हें हम फख्र के साथ खुद से जोड़ते तो हैं लेकिन वो बस हमारी भावनाओं से जुड़ी हैं, जरूरतों से नहीं? भारत में बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ मार्क टली:
भारत और ब्रिटेन के रिश्ता जो है, संबंध जो है, जैसा आपने कहा था, ऐतिहासिक है, लेकिन ये इतिहास जो है इतना जैसे इन्फ्लुएंशियल नहीं है, क्योंकि नए पीढ़ियों ब्रिटिश राज के बारे में नहीं सोचता है और बहुत सारे लोग नहीं जानता है उसके बारे में, तो ये ऐतिहासिक लिंक्स जो है मेरा ख्याल है कि वो कमजोर हो गया, और जैसे व्यापार के लिंक्स जो है वो भी कमजोर हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो गया और आज का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर मेरा ख्याल है इंग्लैंड में इंडियन कंपनी है, टाटा कंपनी। सो दोनों व्यापार के रिलेशन और ऐतिहासिक रिलेशन दोनों तो कमजोर हो गया मेरा ख्याल।
इंग्लिश्तानी होना भारत के एक बड़े तबके के लिए सम्मान से जुड़ा मसला रहा है, ये और बात है कि आप न चाहें तो भी इसके असर में आ जाते हैं। दोनों देशों की मौजूदा सरकारें आपसी रिश्ते को आगे बढ़ाने में जुटी हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ही डेविड कैमरन के लिए भी ये मसला वरीयता सूची में ऊपर है, तो क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी?
मुश्किल है, क्योंकि कैमरन ने उसके सबसे पहले विजिट था, उसके पहले विजय के बाद उसने पहले इंडिया को आया और दो तीन बार आए थे पहले प्राइम मिनिस्टरशिप में, लेकिन उसके परिणाम बहुत कम था, और मोदी जैसा आप देख सकते हैं कि मोदी बहुत बहुत देशों विजिट किया था इंग्लैंड आने के पहले, इसलिए इसका एक शायद सबूत था कि मोदी ने रुचि नहीं है इस रिलेशनशिप में, और इंग्लैंड की क्या खासियत है जिसके वजह से रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, ये तो सवाल है।
दो सौ 65 सालों का रिश्ता इतनी आसानी से खत्म होने वाला तो नहीं, लेकिन मौजूदा दौर में रिश्तों के आधार जरूर बदलने लगे हैं। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बिहार में मिली हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का बचाव किया है। अफ्रीकी प्रवासियों को यूरोप जाने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका के नेता माल्टा द्वीप में जुट रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति थीन सीन ने विपक्षी पार्टी की नेता आंग सान सूची को रविवार को हुए आम चुनावों में जीत के लिए बधाई दी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पुलिस ने राष्ट्रपति भवन के नजदीक प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए चेतावनी फायरिंग की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के शीर्ष खेल अधिकारियों के साथ बैठक रद्द कर दी है। बीबीसी समाचार।
समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं हेमंत कुशवाहा। आपसे अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।